ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमतास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शान्तिः 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 ओम ओम ओम
आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर इस सायंकालिक प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। इस स्तोत्र में आज विचार के लिए 10वां श्लोक। नरत्वं देवत्वं नगबनमृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननं सदा त्वत्पादाब्ज स्मरण परमानन्दलहरी विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा बटुर्वागेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं मृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते त्वदीयस्त्वं शम्भो भवति भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं वदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धम् परम कृपया पातु मुचितं मदन्य को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः त्वदन्य को वा मे त्रिजगति शरण्य पशुपते प्रभो त्वं दीनानां खलु परम बंधु पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषां अपि किमुत बंधुत्वमनयो
त्वयैव क्षन्तव्यः शिवमदपराधाश्च सकला प्रयत्नात् कर्तव्यम् मदवन नियम बन्धुसरणिः नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वम् अशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननम् सदा त्वत्पादाब्ज स्मरण परमानन्दलहरी विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा नरत्वं देवत्वम्।
शंकराचार्य जी भगवान शिव की भक्ति करने पर जोर दे रहे हैं कि सभी प्राणियों को भगवान शिव की अनन्य भक्ति करनी ही चाहिए, इसके लिए बहानाबाजी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का एक स्वभाव बन गया है, वो अपने मन की बात करता है और मन के अनुकूल हो तो वह स्वतः प्रवृत्त होता है, मन के अनुकूल न हो तो वह हजार बहाना खोजता है और बहानाबाजी करता है। इसी तरह वेदांत श्रवण के बारे में भी कहता है कि महाराज हमको वेदांत समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं कि तुझे संसार समझ में आ रहा है तो वेदांत क्यों नहीं समझ में आता है, हैं? यदि समझने की क्षमता न होती तो संसार कैसे समझता? तू संसार समझ रहा है कि नहीं? क्या संसार भी बिना समझे कर रहा है, किया जा रहा है? देख बेटा, तुझे वेदांत समझ में नहीं आता है, हमको व्यवहार समझ में नहीं आता है। इसका मतलब तू भी मूर्ख है, हम भी मूर्ख है, हैं कि नहीं? बोलो, हमको व्यवहार समझ में नहीं आता है। पता नहीं तुम लोग कैसे व्यवहार कर रहे हो। कभी कभी हम सोचते हैं बैठे बैठे, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है ये संसारी लोग ये व्यवहार कैसे चला रहे हैं। हमको तो अपना जीवन है उसी को चलाना इतना मुश्किल पड़ रहा है, और आप संसारी लोग हो, अपना घर भी चलाते हो, बच्चों को पढ़ाते भी हो, कर्मचारी रखकर तनख्वाह भी उनको दे रहे हो, गाड़ी भी चढ़ रहे हो, ड्राइवर भी रखे हुए हो, घर में रसोई बनाने वाले बाई भी रखे हो, झाड़ू पोछा करने कपड़ा धोने वाला वो भी अलग रखे हो, घर का टैक्स भी तुम पेमेंट करते हो, बिजली पानी सबका करते हो, हैं? उसके अलावा कभी कभी आपके कोई मेहमान अतिथि आते हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार भी करते हो, बेटी की शादी भी करते हो, बेटे के शादी भी करते हो, सब कुछ करते हो। और कभी कभी हम जैसे सन्यासी पहुंच गए, उनको खाना भी खिलाते हो, उनको अपने क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी देते हो, और इसके अलावा घर में पंडित और पुरोहित को बुलाते हो, उनको भी खिलाते हो, दान भी करते हो, मंदिर में जाते हो, दो पैसा दान पेटिका में डालते हो, पूजा भी करते हो, कितना करते हो। हम तो न कोई मेहमान बुलाते हैं, हमारे यहां कोई मेहमान नहीं आता है, हैं? अब हमने न कोई कपड़ा धोने वाला रखा है, न घर का टैक्स, क्योंकि घर ही नहीं है तो घर का टैक्स क्या करेंगे? बोलो, घर नहीं है, घर का टैक्स भी हम पेमेंट नहीं करते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि तुम लोग कैसे कर रहे हो ये सब, संसारी लोग कैसे करते हैं, सब निर्वाह करते हैं, सारा व्यवहार कर रहे हैं। हमको भी समझ में नहीं आता कि तुम लोग कैसे करते हो। और शायद तुम लोगों को भी समझ में नहीं आता कि महात्मा वेदांत इतना अच्छा कैसे बोलता है। हमको समझ में आ कि तुम लोग व्यवहार कैसे करते हो। जब वेदांत के लिए हम कहते हैं कि लगो तो हमको समझ में नहीं आता है, कह देते हो। और संसार के बारे में तुम ऐसे लगते हो, तो मुझे लगता है संसार के बारे में तुम लोग जो है संसारी लोग हैं, वो अनेक जन्मों का ट्रेनिंग लेकर आए हैं ना, इसीलिए वो समझ में आ रहा है। और शायद हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, इसलिए संसार हमको समझ में नहीं आता। बात सही है, गीता में ये बात स्पष्ट कहा है, जन्मांतरीय अभ्यास ही इस जन्म में काम देता है। यदि पिछले जन्म जन्मों में यदि वेदांत अभ्यास किया होगा तो वह भी काम देता है। और संसारियों ने पिछले पिछले जन्म में भी संसार का ही ट्रेनिंग लिया है, वही करते आए हैं, वही संस्कार काम दे रहा है। अभी अभी फटाफट कर लेते हो तुम लोग सब कुछ। हम जब कुंभ मेला में छावनी लगाते हैं वहां भी पहुंच जाते हो नहाने, बड़ा मुश्किल है। हमको तो अपने एक ही शरीर को चलाना बहुत मुश्किल पड़ता है। बीमार पड़ते हो तो हमारी भी औषधि दवाई तुम लोग खरीद देते हो, है? अपना भी तुम्हारा औषधि दवाई कोई और खरीदता है, है? और हमारा तो हमको भी और भी खरीद देते हैं। महाराज कुछ दवाई चाहिए ले जी। कितना ख्याल रखते हैं दूसरे, इसलिए हमको व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये तो जिस पर रुचि होता है उस पर वह सफल होता है। बहानाबाजी मत करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए सभी को, ये संदेश यहां से दिया जा रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं, नरत्वम देहवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता पशुत्वम कीटत्वम भवतु विहगत् त्वादि जननम सदा त्वत्पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी विहारासक्तम चेत हृदय किमिह किम तेन बपुषा। लोग कहते हैं अनेक जन्मों के पुण्य से मानव जन्म प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, और इसी प्रकार से लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्तम श्रुतिपार दर्शनम। देख लो ये मानव जीवन की क्या महती महिमा आचार्यों ने और शास्त्रकारों ने शास्त्र में बहुत वर्णन किया है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ, अब वो प्राप्त हो चुका है। नरत्वम देवत्वम, देवत्वम देवता भाव यानी देव योनि की प्राप्ति, नर यानी मनुष्य योनि की प्राप्ति, नग वन मृगत्वम। मृग दो प्रकार के होते हैं, एक मैदानी एरिया में रहने वाले मृग और एक पहाड़ी बर्फीले एरिया में रहने वाले मृग। कस्तूरी मृग वह बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं। हम जब पहली बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा में थे, पैदल यात्रा, 36 दिन का यात्रा था वो पैदल, हम गए थे तो एकदम हिमाल पहाड़ बर्फीले पहाड़ को क्रॉस करके तिब्बत में जाना पड़ता था। वो लिपु लेक क्रॉस करना पड़ता है पैदल यात्री, पैदल यात्रा करने वालों को, बहुत दुर्गम है। 19,000-20,000 की हाइट में पहुंचना पड़ता है और बर्फ ही बर्फ रहता है, और उस घाटी को उस पहाड़ को क्रॉस करके फिर वो तिब्बत में प्रवेश करते हैं। उस पहाड़ की चोटी में सीमा है, तिब्बत भारत और नेपाल, इस सीमा का सीमा स्तंभ है तीन देशों का, वहीं से क्रॉस करते इंडिया से जाने वाले यात्री भी वहीं पहुंचते हैं, उसी सीमा स्तंभ से फिर तिब्बत में प्रवेश करते हैं। तकलाकोट उधर का गांव है, और नेपाल से जाने वाले भी वहीं पहुंचते हैं लिपुलेख, फिर वहां से उधर तकलाकोट पहुंचते हैं, उसके आगे फिर पठार है, मैदानी एरिया है, गाड़ी मिल जाता है, लेकिन इधर से जाते समय में वहां तक पैदल ही चलना पड़ता है। तो वहां जब हम उस लिपुलेख के पहाड़ी में है, रात को जब विश्राम करना पड़ा, क्योंकि एक ही दिन वो लेक क्रॉस तो कर नहीं सके, हाई अल्टीट्यूड होता है, चला ही नहीं जाता है, अल्टीट्यूड सिकनेस के कारण चला नहीं जाता है। एक किलोमीटर का चलने के लिए 5 घंटे लगते हैं, कितना कदम ही नहीं चलता है तो क्या करोगे, श्वा श्वा होगा, 1 किलोमीटर चलने के लिए 5 घंटा लगेगा। तो ऐसे उस घाटी को पार करना पड़ता है, तो एक ही रात में उसको पार नहीं कर सके, तो बीच में एक पड़ाव बना रखा था किसी व्यापारी ने, बड़ा भारी तंबू डाला था और एक चाय का उसने दुकान सा खोल रखा था, आने जाने वाले यात्रियों को वो चाय पानी का सेवा करता था और उससे उसको पैसा मिलता था, व्यापारिक दृष्टि से उसने लगा रखा था। ये कोई गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम तो स्वतंत्र गए थे ना, इंडिया की तरफ से न जाके नेपाल के रास्ते से गए थे, तो किसी गवर्नमेंट पैकेज में नहीं गए थे हम, अपनी ही व्यवस्था से स्वतंत्र रूप से साधु फक्कड़ी में गए थे हम। तो अब क्या करें, तो फिर उसी के यहां गए, चाय पी लिया और वहीं सोना था, तो उसने चाय पिला दी, हमने कहा कुछ खिलाएगा तू, भूख लगी है। हालांकि हमारे पास सत्तू चिवड़ा तो था, कुछ ड्राई फ्रूट था, ड्राई फ्रूट हमारा जो पिट्ठू था सामान ढोने वाला, उसको कहां से पता चल गया कि निकाल निकाल के रास्ते में वही खा गए वही खा गया, जब झोला खोला तो है ही नहीं, ड्राइवर ही नहीं है, क्या करे, चलो खा गया कोई बात नहीं है। तो उसने फिर कहीं आटा रखी थी, रोटी भी बना दी, पेट्रोमैक्स रखा था वो गैस स्टोव्स, उसी में रोटी बना दी, चाय बना दी पाउडर के दूध से, वही पी लिया सो गए। तो रात को और भी यात्री वहां आ गए, लगभग तंबू के अंदर हम 12-15 यात्री थे। तो रात के समय में 8-9 बजे के आसपास, वहां तो फिर जल्दी सो जाते हैं, 8 पर पुलिस वाले आए, सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा फोर्स, तो उन लोगों को कई गुप्तचरी से पता चल गया होगा कि वहां उधर तिब्बत की तरफ से, चाइना की तरफ से रात को कस्तूरी मृग मारने के लिए वो लोग आते हैं और कस्तूरी ले जाते हैं। तो उसकी रक्षा के लिए वो लोग बंदूक भर के घूम रहे थे जंगल में, माने जंगल के, वहां तो जंगल तो आई नहीं, बर्फ ही बर्फ के पहाड़ में, कहीं वो कंदराओं में छुप जाते हैं। हमने पूछा जब रात को तुम लोग यहां, बोले ये कस्तूरी मृग के लिए उधर से आ जाते हैं, मार के ले जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमारी ड्यूटी यहां है। तो फिर रात को कहां रहते हो, यहां रहने का कोई ठिकाना है ही नहीं, नीचे बेस कैंप में उसका चौकी है, वहां से ड्यूटी वहां लगा देते हैं ऊपर। तो हम ज्यादा करके वो पहाड़ के जो कंदरा पत्थरों के आड़ में बैठ जाते हैं, तो हम गोली चलाते रहते हैं रात भर, तो मृग की हम रक्षा करते हैं, और वो लोग जो आते हैं तो मृग मार के ले जाते हैं। तब हमें पता चला कि कस्तूरी मृग जो है वह बर्फीले पहाड़ों में, पहाड़ की चोटियों में रहते हैं। तो लगभग शंकराचार्य जी को तो पता होगा, तो उन्होंने वो संकेत कर दिया, गिरी माने पहाड़, बना माने मैदान, क्योंकि वहां तो बन है ही नहीं, हिमालयों में पहाड़ों में तो जंगल तो है ही नहीं, तो फिर वन कहां है, तो उनकी तलहटी पर है। तो कुछ मृग जो कस्तूरी नहीं है, वे लोग साधारण जो मृग हैं वो नीचे तलेटी के जंगल में रहते हैं, और जो कस्तूरी मृग है उनके शरीर में कस्तूरी है, इसलिए बहुत हीट होता है, बहुत गर्म होता है, तो वे लोग तो ये गर्मी में नीचे तो रह ही नहीं पाएंगे ना, इसीलिए वो बर्फीले बर्फ ही बर्फ जहां है वहीं रहते हैं। तो प्रकृति ने सारी व्यवस्था मिला रखी है, तो वो वहां रहते हैं। तो वही बताया, नरत्वम देवत्वम नग वन मृगत्वम मशकता। मशक माने मच्छर, मशक समान कपि रूप धरई। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए बारे में, एक बार हनुमान जी मच्छर हुए थे, वो पता है कि नहीं बोलो। एक बार हनुमान जी क्या हुए थे, मच्छर भी हुए थे। अब हनुमान जी को मच्छर होने में कोई आपत्ति नहीं, तो तुम हमको क्यों आपत्ति भाई है? मच्छर का जन्म, मच्छर की योनि प्राप्ति होती है, तो उस समय क्या फर्क पड़ता है? हनुमान जी तो मच्छर हुए हैं है? कब हुए थे हनुमान जी मच्छर? जब लंका जा रहे थे भगवान राम के कार्य सिद्ध करने के लिए है? राम की अंगूठी हाथ में लेकर जब जा रहे थे लंका, तो सामने कौन आ गई? सुरसा। सुरसा आ गई है, और उसने उसको रास्ता रोक लिया। सुरसा ने, तुम कौन हो, कहां जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो? बोले तू कौन है? मैं लंका के जो है चौकीदार हूं, सुरक्षा के लिए मुझे रावण ने यहां खटा रखा है, और मेरी ड्यूटी है कि कोई मुझसे बचे तो आगे जाए, नहीं तो कोई आगे नहीं जा सकता है। तो क्योंकि मेरा महासना, मैं बहुत खाने वाली हूं, तो तुम मेरा भोजन बनने के लिए, तुम देवताओं ने परमात्माओं ने भेजा है, आज बहुत दिन से हमको खाने नहीं मिला है, तुम आज आ गए हो ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, तो आज तो मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया भले तुम खा लेना, क्योंकि मुझे भगवान का काम करना है, परमात्मा का काम पूरा हो जाने के बाद मुझे ये अन्नमय कोष की कोई आवश्यकता नहीं है, है? आपको इस अन्नमय शरीर की आवश्यकता किसके लिए है बोलो? बेटे की शादी करने तक के लिए है कि है? कब तक के लिए? पोते की शादी करने तक के लिए है बोलो? आपको ये शरीर कब तक के लिए है? आप तो यही चाहोगे कि नहीं महाराज, बेटे की शादी तक तो कम से कम रहे, बेटी की शादी हो गई, अब हो गया बेटा, अब कब तक? बोले नहीं महाराज, पोते की भी शादी करनी है। हे भगवान, कब तक? भगवान के इस भजन करने के लिए तो कोई भी नहीं कहता है, जब तक शिव साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार न हो तब तक के लिए है। मैं ये चाहता हूं कि इसी शरीर में भगवत साक्षात्कार हो, उसके बाद ये शरीर ना भी रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टारगेट कोई भी नहीं बनाता है, वो लक्ष्य कोई बनाता है? संसारी लोग, संसार में कोई होगा एकाध, कोई होगा एकाध। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये, एततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम व्यक्ति तत्त्वतः। हजारों में कोई एकादा होगा जो इस शरीर को परमात्मा प्राप्ति के लिए टारगेट बनाता हो, लक्ष्य बनाता हो, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं। हजार जब तक बांचेगा, बच्चा रहेगा, जब तक जीवन है तब तक अनेक लक्ष्य बनाता रहेगा, मैं ये करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा, ये शरीर परमात्मा के काम पूरा करने के लिए है, क्योंकि हमारा तो कभी भी पूरा होगा नहीं। न जातु काम कामाना उपभोगे न साम्यति है, ये जीवात्मा के काम के लिए शरीर नहीं है, क्योंकि जीवात्मा ये चाहे कि इस शरीर से मैं अपना सारा काम पूरा करूं, उसके बाद ये शरीर जाए तो जाए। तो हर आज तक इतिहास में जितने भी गए हैं, काम अधूरा छोड़कर ही गए हैं। कोई है पूरा करके जाने वाला? मिला है कोई? अब मैंने काम पूरा किया है? अरे हरिद्वार तो जाता नहीं, अब शरीर छोड़कर जाएगा, वो काम पूरा करेगा वो। कहते हैं कि चलो कैलाश मान सरोवर, हम तुम्हें कैलाश मान सरोवर की यात्रा करा देंगे। बोले कब महाराज? बोले अगले साल 2013 मई महीना में कैलाश जाने वाले हैं ग्रुप लेकर, चलोगे? बोले कितना दिन लगेगा महाराज? हमने कहा कम से कम 15-20 दिन तो लगेगा। महाराज वो तो बहुत लंबा हो गया, इतना समय निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, उससे कम समय में यात्रा नहीं हो सकती है, कम समय में यात्रा नहीं हो सकती है। बोलो महाराज उनके लिए कैलाश यात्रा के लिए भी फुर्सत नहीं है, समय निकाल नहीं पाते हैं। तब सुरसा ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगी, भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, पहले मैं राम का काम पूरा करूं फिर उसके बाद तुम खा लेना, भले खा लेना, क्योंकि मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, इस शरीर से जो प्रयोजन करना है वो प्रयोजन पूरा हो जाएगा, अब तुम खा लेना। बोले नहीं बेटा, ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। हर व्यक्ति ऐसा ही कहता है, फिर एक प्रयोजन पूरा होगा तो फिर दूसरा प्रयोजन सामने रखेगा, फिर तीसरा प्रयोजन रखेगा, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। अब तो तुमको मेरा आहार बनना ही पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तुम्हारा नियम है तो फिर खाओ तुम, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, खाओ। तो हनुमान जी ने बड़ा भारी शरीर बना दिया और कहा कि ले खा। हनुमान सोचने लगे इसका मुख छोटा है, इससे बहुत बड़ा बना देता हूं, है? बहुत बड़ा शरीर बना देता हूं। तो वो कहां कम थी, महासनो महापापमा, है? उससे भी बड़ा मुख बना दिया, और इतना बड़ा मुख बना दिया ऐसा लगा कि हनुमान जी का जो बहुत बड़ा शरीर है वो तो सुरसा के लिए एक छोटा सा रसगुल्ला बराबर हो गया। आजकल मिनी इडली बनाने लग गए हैं गुजराती लोग, साउथ इंडियन में तो बड़ा इडली होता था, इतना बड़ा बड़ा इडली। हम दो चार घरों में गए, खाना खाने बुलाए गए, वहां इडली बनाया, इतनी छोटी छोटी, वो कमीज के बटन जैसे छोटे छोटे, उससे थोड़ा बड़ा है। तो हमने कहा ये क्या बड़ा, मारा इडली, इडली लो, इडली लो। हमने कहा इडली तो थोड़ा बड़ा होता है, ये तो क्या? बोले ये मिनी इडली, सेमी इडली, और क्या। उस समय तो सुरसा ने जो मुख बनाया उसके सामने तो हनुमान जी का शरीर तो वही सेमी इडली जितना ही हो गया, मिनी इडली, छोटा सा। अरे हनुमान जी ने फिर बड़ा बनाया, उससे दुगना। सुरसा ने फिर दुगना, आप लोगों ने सुना है ना ये कहानी तो बहुत बार, तो बहुत सुना। जब हनुमान ने देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने बुद्धि लगा ली, है? क्योंकि उनके पास बुद्धि था इसलिए लगाई, हमारे पास बुद्धि नहीं हो उसके लिए बुद्धि नहीं है, और के लिए तो है। तो उन्होंने तुरंत बुद्धि लगा लिया, अब इसके मुख को पार नहीं पाएंगे शरीर बढ़ाकर, तो क्या करें? बोले मशक समान कपि रूप धरई, छोटा सा मच्छर बन गए। भगवान हनुमान जी को काम आ गया भगवान की सृष्टि, यदि भगवान ने मच्छर की सृष्टि न किया होता आज हनुमान को अपने जान बचाना मुश्किल संभव होता सुरसा के सामने। मच्छर की सृष्टि परमात्मा की है और उस परमात्मा के सृष्टि का उपयोग किया हनुमान जी ने, और मशक समान कपि रूप धराई, और फट उसको कहा कि देख, घुस गए उसके मुख के अंदर। बोले ले खा ले, तेरे मुख के अंदर मैं घुस गया हूं, चबा ले अब। अब उसका इतना बड़ा मुख था, वो चबाने लगी तो कहां होगा, कुछ नहीं। तो हनुमान जी एक कोने में जाकर बैठ गए, कहीं चिपक गए वो। कभी कभी खाना खाने के बाद मुख शुद्धि के लिए धाना वगैरह खाते हो ना, बरियाली वगैरह, तो चबाते चबाते किसी दांत के कहीं खोंच में जाकर वो फंस जाता है, वड़ियाली है ना, फंसा ही रहता है, कुल्ला करो तो नहीं जाता, फिर एक तिनका लेकर जबरदस्ती निकालोगे तभी जाएगा। हनुमान जी सुरसा के मुख के अंदर वड़ियाली जैसे फंसता है, सुरक्षित बैठ गए। सुरसा ने देखा कि अब तो खा गए, निकल गया, अब वाह है नहीं अब, तो थोड़ी देर के बाद फिर वो कान से निकल गए। हनुमान जी बोले तूने खाया कि नहीं मुझे, बोले हाँ खाया तो सही, अब तो मैं जाऊंगा राम के काम करने के लिए। तब सुरसा, हाँ सुरसा कोई राक्षसी नाम था वो, लेकिन देवताओं के प्रायोजित थी वो, है ना, रामायण में साफ लिखा है, कोई हनुमान के दुश्मन के रूप में नहीं, राम के दुश्मन के रूप में नहीं, हनुमान की बुद्धि परीक्षा के लिए नाग माता देव माता शब्द आया है। वो कहा कि हनुमान तुम बहुत बुद्धिशाली हो, तुम अपने काम करने में सफल हो जाओगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो हनुमान जी चले गए। इतनी लंबी कथा कहां से आ गई भाई, मशकत्वम नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता। हनुमान जी को मच्छर के रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं है, और आप लोगों को यदि पूछा जाए मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो चाहोगे कि नहीं, मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो ना, क्यों? हनुमान जी को मच्छर होने में कोई आपत्ति नहीं रही तो तुम्हें क्यों आपत्ति होगी, बोलो। देखो ये प्रासंगिक है, हनुमान जी का शरीर बांदर का हो चाहे मच्छर का हो, अंत में आया है हृदय परमात्मा में लगा हुआ है। यदि हृदय राम में लगा हुआ है हनुमान जी का, वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य से देव थे, एकादश रुद्र थे, तब भी उनका मन भगवान में लगा था, मनुष्य थे तो भी उनका मन भगवान में लगा था, बंदर हो गए तो भी उनका मन कहां लगा है, राम में लगा है, और उस समय मशक हो गए, मच्छर हो गए, तब भी उनकी वृत्ति उनका मन राम के चरण और राम की सेवा में लगा हुआ है। तब जब मन राम की सेवा और राम के चरण में लगता है, परमात्मा में लगता है, तो शरीर से क्या लेना देना है, बोलो। आप यही चाहो कि शरीर मरने के बाद दूसरे जन्म में शरीर जो हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन शिव चरण में लगे रहे, यही हम चाहते हैं। हमको मच्छर से कोई लेना देना नहीं, मच्छर के शरीर से कोई, हनुमान को फर्क पड़ा, बोलो। मच्छर होने पर हनुमान जी को क्या, भगवान राम के चरण में जो भक्ति भाव था वो खंडित हुई क्या, हुई क्या? यदि वृत्ति खंडित होगी तो मनुष्य हो गए तो भी वृत्ति खंडित होती, अभी हो ही रही है, अभी मनुष्य है तो कौन सा बहादुरी कर ली, वृत्ति खंडित हो रही है कि नहीं? और जबकि हनुमान जी मच्छर हो गए तो भी उनकी वृत्ति खंडित नहीं है। नरत्वम देवत्वम नगमन मृगत्वम मशकता पशुत्वम कीटत्वम। ये देखो, चलो मच्छर तो होना नहीं चाहोगे, मरने के बाद गधा होना चाहोगे कि नहीं, पशु होना चाहोगे कि नहीं, बोलो, नहीं चाहोगे, बैल होना चाहोगे कि नहीं? नंदी को जब फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, बोलो। नंदी को फर्क पड़ा, नंदी वास्तव में पहले मनुष्य थे, देव किसी की ऋषि के श्राप से वो नंदी होकर पशु होकर पैदा हुए, लेकिन शरीर नंदी का पशु का होने पर भी उनका मन भगवान शिव से अलग नहीं हुआ है। पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है। हनुमान को मच्छर के शरीर में भी राम भक्ति यथावत चल रही है। पशुत्वम नंदी को पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है। भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं बोलो? भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं? क्या बात है, हुए। पुराण में स्पष्ट लिखा है हयग्रीव। अरे हयग्रीव अवतार है कि नहीं? क्योंकि एक हयग्रीव नाम का असुर था, उसने वरदान ये मांगी कि मुझे मेरे से ही मृत्यु हो, मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, अन्य किसी से नहीं हो। तेरे से ही का मतलब हयग्रीव से ही हो, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। अब उसने सोचा हयग्रीव केवल मैं हूं, मेरे वाला कोई दुनिया में हयग्रीव है ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु तेरे जैसे हजार हयग्रीव तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तो जानते थे ना ये असंभव नहीं है। अब उसने ये सोचा कि मेरा हयग्रीव, मेरे अलावा कोई हयग्रीव है ही नहीं, इसलिए अब मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया कि हयग्रीव को कैसे मारें। तो भगवान हयग्रीव नहीं बनेंगे तो उसको नहीं मार सकते। यदि भगवान नारायण के नारायण ही रहे, चतुर्भुज के चतुर्भुज ही रहे, तो हयग्रीव को नहीं मार सकेंगे। तब किसी अन्य राक्षस से वो युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद भगवान नारायण थक के चूर हो चुके थे, तो उन्होंने अपने धनुष बाण ड्यूड़ी में रखा, यहां रखे ऐसा टिकाया और सो गए। तो उसी समय देवताओं ने कहा ये दीमक को, दीमकों को, देवभागवत में कथा आती है ये, दीमकों को कहा कि तुम जाओ, सब जाकर वो जो धनुष बाण है ना जिस पर उन्होंने गर्दन टिका के रखा है, उसके रस्सी को चाट कर तोड़ डालो। दीमकों ने कहा कि ये तो भगवान नारायण है, आराम कर रहे हैं, उनका निद्रा भंग हो जाएगा, पाप लगेगा। नहीं नहीं नहीं, तुमको उससे भी ज्यादा पुण्य लगेगा, तुम चिंता मत करो। बोले पहले तो मना करते रहे दीमक ने, पुराण में लिखा देवी भागवत में, ध्यान देना, मना करते रहे दीमकों ने। बाद में कहा कि नहीं, हमको क्या मिलेगा बोलो, यदि हम जाएंगे वो धनुष बाण की रस्सी को चाट कर खत्म कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा। देवताओं ने कहा कि तुम लोगों को जो हमारे लिए हवन करेंगे ना पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, तो स्वाहा करते समय में जो हाथ में चरु लेकर कुंड में डालते हैं उससे समय जो नीचे गिरता है ना, वो सब तुम्हारे मिल जाएगा। बस दीमकों ने कहा कि तब तो बढ़िया है, हम कर देंगे वही काम। देवताओं को अर्पण किया हुआ भाग भी हमको मिलता है, वो यज्ञ शेष तुम्हारा भाग है, जाओ। तो सब दीमक मिलके गए और रस्सी को चाट लिया। चाटते जैसे रस्सी का वो धनुष का रस्सी टूट गया, वो धनुष तो ऐसा झटका लगा कि भगवान नारायण का गर्दन कट के गया, समुद्र में गिर गया। लेव जी गिर गया, अब क्या करें। तो तुरंत इंद्र आदि आए सब, अरे रे रे रे, रे। तो वहां ऐरावत हाथी कुछ था होगा, कोई नहीं, वो अश्व होगा, उच्च श्रवा आदि, पार से उसका गर्दन काटा और लगा दिया। तो भगवान जिंदे हो गए, वैद्य तो थे ही, ऑपरेशन करने वाले देवताओं का वैद्य कौन, अश्विनी कुमार हैं, देवता तो थे ही, वो तुरंत तो सर्जरी कर दी। बस भगवान तो अब क्या हो गए, हयग्रीव हो गए, हयग्रीव, हय नहीं हुए, अयग्रीव हो गए हैं। देखो हनुमान जी क्या हुए हैं? ना सॉरी माने गणेश जी का क्या हो गए वो करी ग्रीवा हाथी ग्रीवा, शरीर सब ठीक है लेकिन मुख दूसरे का है। भगवान नारायण जब हयग्रीव हो गए बोले इसमें भी कोई राज है चलो, तो उसी हयग्रीव रूप से फिर हयग्रीव राक्षस के साथ भगवान नारायण ने युद्ध किया तो हयग्रीव द्वारा ही हयग्रीव की मृत्यु हुई। तो दो हयग्रीव हुए, एक राक्षस हयग्रीव दूसरा साक्षात भगवान हयग्रीव। तो भगवान जब घोड़े होने में कोई आपत्ति नहीं तो हमको क्या आपत्ति भाई, बोलो हमको क्या आपत्ति है? भगवान को आपत्ति नहीं हुई। पशुत्वम कीटत्वम भवतु विहगत्वादि जननम, शंकराचार्य जी कहते हैं हे शिवा यदि कीटत्व कीड़ा भी बनना पड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अभी तो मैं मनुष्य हूं लेकिन इस मनुष्य जन्म के बाद यदि कीड़ा भी बनना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिच्छू को तो कीड़ा ही तो कहेंगे ना, बोलो कहेंगे कि नहीं? बिच्छू पशु कोटि का है कि पक्षी कोटि का है कि मनुष्य कोटि का है कि कीड़ा कोटि का है? कीड़ा कोटि का है ना। अब वो भी भगवान शिव के श्रृंगार में काम आ गया कि नहीं? कर्ण कुंडल बन गए भगवान शिव के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है? देख लो। लेकिन वृत्ति भगवान की होनी चाहिए, शरीर के मतलब ध्यान मत दो, शरीर जो कुछ भी हो। शंकराचार्य जी वही आगे कहते हैं विहगत्वम पक्षी, पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं है भाई, पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे काक भुसुंडी क्या थे हैं? काक भुसुंडी मनुष्य थे कि पशु थे कि कीड़े थे कि क्या थे? पक्षी, विहग आकाश में उड़ने वाले पक्षी थे। उनको पक्षी शरीर प्राप्त होकर कोई अड़चन रहा? श्रवण मनन निधि ध्यासन करने में उनको कोई रुकावट हुई? नंदी को पशु शरीर होने में कोई रुकावट हुआ शरीर से? कोई रुकावट नहीं। व्यगत्वम पक्षी का शरीर मिलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गरुड़ पक्षी है कि पशु है? और भगवान की सेवा करने में वह समर्थ हुआ कि नहीं? वाहन बन गया कि नहीं? नंदी पशु है, शिव जी की सेवा करने में समर्थ हो गया कि नहीं? और तुम हम मनुष्य होकर क्या कर रहे हैं, हैं? क्या कर रहे हैं? जीव जी की सेवा करते भी पूरा नहीं हो रहा है, शिव जी की तो छोड़ दो, जीव जी ये सब क्या है? जीव जी है? पत्नी पति की सेवा करते करते थक जाती है, पति पत्नी की सेवा फरमाइश पूरा करते करते थक जाता है, मां बच्चे की सेवा करते करते थक जाती है, हा? बोलो ये सब क्या है? किन की सेवा कर रहे हैं? जीव जी की। और हम मनुष्य होकर भी शिव जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और ये लोग नंदी क्या शिव जी को लेकर ढो के चले जा रहे हैं? और पक्षी होकर भी गरुड़ भगवान को ढोकर चले जा रहे हैं, मयूर पक्षी होकर भी षणमुख भगवान कार्तिक को लेकर चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है पक्षी होने पर? भगवान की सेवा करने में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई अड़चन हो रहा है, हैं? नहीं हो रहा है। अरे बिच्छू जहरीला होने पर भी भगवान शिव का कुंडल बन रहा है, क्या सुंदर है। सर्प जीव कीड़ा होकर भी देख लो, चंद्रमा देव हुए कि नहीं, देवत्वम, और वह भगवान शिव के मुकुट की शोभा, भगवान शिव के सिर की शोभा बन गया कि नहीं। वो तुम कहोगे कि नहीं महाराज, भगवान की सेवा के लायक हम नहीं हैं, हम तुमसे पूछते हैं, तुम कहते हो ना भगवान की सेवा लायक हम नहीं हैं, हम गए गुजरे हैं, है? हम तुमसे पूछते हैं क्या तुमने ऐसे कौन से अपराध कर ली जो भगवान की सेवा लायक नहीं। चंद्रमा ने जो अपराध की है क्या वैसा अपराध तुम लोगों ने कर चुके हो क्या? चंद्रमा ने कौन सा अपराध किया था पता है? है? अपने गुरु के पत्नी माने पत्नी को ही, गुरु माता को ही पत्नी बनाया कि नहीं? कितना नीच कर्म कर लिया उसने, है? किया कि नहीं बोलो ना इतिहास। बुद्ध किससे पैदा हुआ है? और बुद्ध की मां किसकी पत्नी थी है? चंद्रमा की पत्नी थी, बृहस्पति की पत्नी थी। बृहस्पति कौन थे? चंद्रमा के गुरु। और इतना निकृष्ट कर्म किया, इतना पाप कर्म किया, फिर भी शरीर से उसने जो कुछ भी किया लेकिन मन भगवान शिव में लगा हुआ होने के कारण वृत्ति से वह भगवान शिव के भक्ति करने में समर्थ हुआ। श्राप मिल गया, कलंकी है वो, कलंकित है, निकृष्ट कर्म किया, फिर भी भगवान के शोभा का बन गया कि नहीं, भगवान के प्रसन्नता का पात्र बना कि नहीं। मुझे लगता है वो उसकी वृत्ति ठीक है। देवत्व शरीर से कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला है, मन ठीक रखना, वृत्ति ठीक रखना, वृत्ति भगवान के चरण में होनी चाहिए। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हृदय है। हृदय ठीक रखो, हृदय से काम करो, सेवा भगवान की सेवा, संसार की सेवा मन लगाकर न भी करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा की सेवा मन लगाकर करो। नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता मृग। हमने मृग के बारे में कह तो दिया, दो प्रकार के मृग हैं, लेकिन भगवान शिव के जो चतुर्भुज हैं ना रूप, चार हाथ वाले भगवान शिव के, एक हाथ में ये दो उंगलियों के बीच में मृग है। मैंने पहले दिन भी इसकी व्याख्या कर दिया था। मृगधारम भगवान शिव के ध्यान मंत्र में आता है कि नहीं? मृगधारम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये दंतिक्त्वाकृत सुंदराम वरधरे त्रैलोक्य सारे हरे। मृगधारम भगवान शिव मृगों को धारण करते हैं, उनके लिए प्रिय है वो। वसुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम। आदिपद से जो उक्त हैं, जिसका नाम लिया पशुत्व देवत्व, इसके अतिरिक्त भी यदि कोई योनियां हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देव से भिन्न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राक्षस भी तो देव भिन्न है ना, राक्षस किस योनि, पशु में आएंगे कि पक्षी में आएंगे कि मनुष्य में आएंगे कि देवता में आएंगे? राक्षस हैं, असुर हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि से राक्षस और असुर होने पर भी मन भगवान के चरण में लगता है तो राक्षस होने में कोई आपत्ति नहीं। प्रहलाद का शरीर राक्षस का शरीर है। हां, प्रहलाद का शरीर किसका है? जन्म किस कुल में हुआ है? जन्म राक्षस कुल में हुआ, लेकिन मन भगवान में लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस कुल में पैदा हो तब जाकर भगवान की भक्ति करें, ये कुल वगैरह का कोई महत्व नहीं है। किस जाति में पैदा हो तो भगवान की भक्ति हो, शरीर से कुछ लेना देना नहीं भाई। पुरुष शरीर हो कि महिला शरीर हो, शरीर से कोई मतलब नहीं है। पार्वती पुरुष शरीर वाली थी कि महिला शरीर वाली थी, शरीर से कुछ लेना देना नहीं। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, ये हैरान करते हैं प्राय करके, क्योंकि हम नेपाल में जहां मेरा आश्रम है गंडकी नदी के किनारे और शालिग्राम क्षेत्र है, वो गंडकी नदी में शालिग्राम आते हैं और वहां शालिग्राम मिलते हैं और गंडकी नदी का अंत वहीं होता है। मुक्तिनाथ दामोदर कुंड से निकल के जो गंडकी नदी आती है वह देवघाट जहां हमारा आश्रम है वहां तक गंडकी नदी उसका नाम रहता है। जब दूसरी बड़ी नदी के साथ वह मिलती है तो दो नदी मिलकर उसका तीसरा नाम नारायणी हो जाता है, गंडकी नाम खत्म हो जाता है। त्रिशूली और गंडकी दोनों मिलकर संगम में दोनों मिलने के बाद फिर उसके आगे नारायणी होती है, उसका नाम नारायणी होता है। और नारायणी कहां तक है तो बिहार में पटना के पास सोनपुर तक वह गंडकी नारायणी रहती है और फिर वहां भागीरथी के साथ मिलने के बाद वो नारायणी नाम भी खत्म हो जाता है। तो फिर वहां नाम क्या होता है उसका, सभी नदी मिलकर सभी का नाम एक ही होता है, भागीरथी। सारे नदी भागीरथी में मिलते हैं, अपना नाम और रूप समाप्त करके समुद्र में पहुंचते समय में सभी नदी का नाम क्या हो जाता है, भागीरथी गंगा, भागीरथी गंगा हो जाता है। कोई नदी अपने नाम और रूप में समुद्र में नहीं पहुंचते, शुरू से अंत तक एक ही नाम रहे ऐसा नदी केवल दुनिया में एक ही है। ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलते समय तो ब्रह्मपुत्र के रूप में मिलता है, लेकिन जहां उद्गम हुआ और तिब्बत और चाइना में उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, दूसरे नाम से वहां, और भारत में आने के बाद उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलता है। तो जहां उद्गम से समुद्र पर्यंत सतत प्रवाह के रूप में एक ही नाम और एक ही रूप में प्रवाहित होने वाली नदी भागीरथी गंगा, गोस्वां गोमुख से लेकर सागर तक उसका नाम भागीरथी ही रहता है और सबका नाम बाधित हो जाते हैं। अलकनंदा नाम गंगा में मिलने के बाद बाधित हो गया, ये देख लो। जमुना का नाम इलाहाबाद में पहुंचकर गंगा में मिलने के बाद जमुना बाधित, उसके आगे जमुना कई नाम नहीं है, प्रयाग तक ही जमुना है, सरस्वती प्रयाग तक ही है, वहां मिल जाने के बाद भागीरथी मिलने के बाद उसका नाम बाधित। आगे फिर गंगा, सब गंगा गंगा। यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवापि अभिगच्छन्ति तथा नाम रूपम विहाय, गीता में कहा ना उसे, नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् सदा त्वत्पादाब्जम्, सदा त्वत्पाद अब्ज, पाद प्लस अब्ज माने अब्ज माने अप माने जल, उससे उत्पन्न हुआ हुआ क्या हुआ अब्ज, किसका नाम है कमल, तो पाद कमल चरण कमल, पादाब्ज का अर्थ क्या हुआ, पाद माने चरण, त्वत्पादाब्ज यानी तुम्हारे आपके चरण कमल। सदा त्वत्पादाब्ज स्मरणम, आपके चरण कमल की स्मृति स्मरण, स्मरण कहां किससे होता है बोलो, स्मरण हृदय से होता है, स्मरण किससे, हृदय से, चित्त से, हृदय में चार जो भाग हैं उनमें से जो चित्त है वह स्मृति चित्त में सन्निहित है। तो पादाब्ज स्मृति यानी हृदय, परमानंद लहरी, उस हृदय में भगवान शिव की जो स्मृति है वही आनंद का तरंग बन जाता है। जिस समय शिव चरण का स्मरण होगा, स्मरण कर्ता को बिना विषय आनंद का अनुभव होगा, और जिस समय भगवान शिव का स्मरण न करके किसी और का स्मरण करोगे तो वो आनंद तरंग हृदय में, वो आनंद का तरंग नहीं होगा। किसी वियोगता व्यक्ति का स्मरण करोगे, मरे हुएओं का, क्या हृदय में आनंद की अनुभूति होगी? है? और किसी प्रियतमा का या प्रिय का स्मरण करोगे तो क्या वो आनंद की अनुभूति होगी? उत्तेजना बढ़ेगा, आनंद की अनुभूति क्या होगा? विक्षेप बढ़ेगा और विक्षेप बढ़ेगा, व्यक्ति बेचैन हो जाएगा प्रियतमा प्रिय की स्मृति से, संसार के विषयों की स्मृति से कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आनंद की अनुभूति शिव चरण कमल की स्मृति से ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आनंद भगवत निष्ठा है, विषय निष्ठा नहीं है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए परमात्मा की स्मृति में आनंद है। आनंद विषय का स्वरूप नहीं है, विषय के स्वरूप नहीं है आनंद। आनंद विषय निष्ठा नहीं है, भगवत निष्ठा है, आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है। निष्ठ माने ब्रह्म में रहने वाला, ब्रह्म का स्वरूप है। विषय में रहने वाला विषय का स्वरूप नहीं है आनंद है? लेकिन लोग कह देते हैं बड़ा आनंद आ गया महाराज, कह देते हैं लोग, पता नहीं कैसा आनंद आया उनको, मिर्ची के पकौड़े जब बारिश हो रही हो है तो चटनी का कोत, मिर्ची की चटनी और मिर्ची के पकौड़े है गरम गरम खा रहे, हा मजा आ भी गया, और यहां से पसीना जुआ से कर रहा है और फिर कह रहा है मजा आ भी गया। लेव जी, अरे वो मजा कोई पकौड़े में थोड़ी है, और दूसरे दिन सुबह फिर रोने लग जाएगा, क्या मजा आ गया भाई। शिव स्मरण करने के बाद फिर दूसरे दिन रोना पड़ेगा? पकौड़े स्मृति से तो दूसरे दिन फिर रोना पड़ेगा। डॉक्टर क्या जाएगा, महाराज डॉक्टर साहब पेट बगड़ी गयो, कैसे बिगड़ा तुम्हारा पेट? बोले काले पकौड़े, मरचो नो पकौड़े खाएवा था, शु काम खाएवा, तुमने खबर छे मरचनी पकौड़ो तो पेट जलन होगा, तुमको पता था, फिर क्यों खाया? नहीं महाराज, बना था, बड़ा स्वाद आ गया, खाने की इच्छा हो गई। अरे इच्छा हो गई तो फिर रोना पड़ा। लेकिन भगवत शिव की जो स्मृति है वो कभी भी स्मरण काल में भी आनंद देने वाली है, पश्चात भी किसी के लिए रिएक्शन करने वाली नहीं है वो। भगवत स्मृति बहुत सुंदर श्लोक है ये। नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम सदा तत्पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी विहारासक्त चेत। चेत माने यदि, यदि हृदयम, ये तुम्हारे पास जो हृदय है वह हृदय पद्म परमात्मा के चरण कमल के स्मृति रूपी आनंद में विहारासक्त, भगवान शिव के चरण में आसक्त हो गया तो क्या होगा? परम आनंद लहरी, उस तरंगों में वह आनंद का अनुभव करेगा। किम इह तेन बपुसा, तब वो व्यक्ति इन शरीरों से क्या लेना देना है उस व्यक्ति को, पशु का हो पक्षी का हो। पुराण में एक कथा आती है, एक बार शिवजी और पार्वती घूमते हुए कहीं जा रहे थे। सनत कुमार लोग, चार भाई है ना सनत कुमार के, सनक सनंदन सनातन और सनत सुजात, ये चार भाई हमेशा ब्रह्म विचार करते रहते हैं। एक दिन एक भाई व्यासपीठ में बैठ के सत्संग करेंगे, कथा करेंगे, और तीन भाई श्रोता बनकर नीचे बैठते हैं, एक वक्ता बन गया, और दूसरे दिन दूसरा वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन श्रोता बनेंगे, तीसरा दिन तीसरा वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन श्रोता बन जाएंगे, चौथे दिन चौथा वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन श्रोता बन जाएंगे, पांचवें दिन पहला वक्ता बन जाएगा, बाकी तीन। इसी तरह 12 महीना निरंतर वेदांत विचार करते रहते थे। एक समय की बात है, किसी पेड़ के नीचे बैठकर सनत कुमार वेदांत विचार कर रहे थे, इसी तरह एक वक्ता और तीन श्रोता बनकर। तो भगवान और शिव शिवजी जा रहे थे, भगवान शिव और पार्वती वहीं से जा रहे थे। वो तो वेदांत विचार में इतना मग्न थे, शिव पार्वती आए हैं इस बात को उनको ख्याल ही नहीं रहा। तो शिव ने तो कोई वास्ता नहीं कि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि भगवान के लिए तो कहा है ना अमानी मान दो मान्य, है ना, अमानी खुद अमानी सन मानदह, खुद अमानी होकर दूसरों को मान देता है, तब उसी कारण से परमात्मा मान्य हो गए, सभी के द्वारा मान्य हो गए। यदि भगवान पहले मानी हुए होते तो फिर सबके द्वारा मान्य न होते। विष्णु सहस्र नाम का श्लोक, अमानी मानदह तस्मात मान्य, देखो अमानी होकर दूसरों को मान देने के कारण ही तो वो सबके मान्य हो गए। भगवान शिव को तो कोई मतलब नहीं है भाई मान सम्मान की, है? तब नीतिकार ने एक जगह लिखा हो, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम रौरवम समा, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, ज्ञानियों के लिए तो प्रतिष्ठा क्या है सुकरी विष्टा, और गौरव क्या है रौरवम समा, है नरक के समान है गौरव। इस तरह उसका कोई दृष्टि ध्यान ही नहीं देते हैं समझदार व्यक्ति, न प्रतिष्ठा की आकांक्षा न गौरवता की, तो निरपेक्ष है। मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो, यही तो भगवान तो उसी स्थिति में थे शिव जी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पार्वती तो जरा दूसरे ढंग की थी, उनको यह लगा कि शिवजी और पार्वती हम तीनों लोग के स्वामी हैं। माता तो पार्वती देवी, पिता देव महेश्वरा, है पार्वती को वो बात ख्याल आ गई, महेश्वर तो सबके पिता हैं और मैं सबकी मां हूं, सबकी मां हूं तो इनके भी मां हूं, तो हमको देखकर ये लोग क्यों नहीं खड़े हुए बैठे हैं पशु की तरह जड़ भाव से। तो भगवान शिव के तरफ कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, आवेश में ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। तो पार्वती ने सनत कुमारों को श्राप दे दिया, ऐसे ही श्राप दे दिया, आगे जाओ तुम लोग सब ऊंट बन जाओ, क्योंकि तुम लोग पशु बुद्धि के बैठे हो, किसी को मान सम्मान देना नहीं जानते हो, पशु हो जाओ, जाओ श्राप दे दिया, और श्राप देते ही पशु हो गए सनत कुमार। तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया सनत कुमारों ने। भगवान शिव ने कहा कि ये देवी श्राप देना केवल तुम ही जानती हो, हमको भी आता है, हमने क्यों नहीं दिया। ये वो व्यक्ति हैं इनको श्राप दो क्या शराब दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो आत्म स्थिति में बैठे हुए हैं, इनकी वृत्ति तो एकदम अखंडाकार वृत्ति बनी हुई है, सतत ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं। तुम्हारे श्राप से इनको सनत कुमार बने तो कोई फर्क नहीं, श्राप से ऊंट बने तो फर्क नहीं, आशीर्वाद से सनत कुमार बने कोई फर्क नहीं, शरीर पर उनका दृष्टि ही नहीं है, देहाध्यास ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी तुम आवेश में आकर श्राप दे दिया, बन गए ऊंट। बोले और क्या, देखो ना आपका मेरा अपमान किया उन्होंने, खड़े तो होना चाहिए था। बोले तुम जानती नहीं हो, बिना विचारे करती हो काम, कई बार कहा कि सोच समझ कर काम किया करो। तो आप लोगों के पति भी ऐसे कहते हैं ना कभी कभी। तो चले आगे बढ़ गए, कई वर्ष हो गया, भगवान शिव ने विचार किया, पार्वती को दिखाएं तो सही उनका श्राप का क्या फल हो रहा है। तो एक दिन घूमते घूमते पार्वती को भी लेके गए, वो चारों भाई तो चार ऊंट बनकर बैठे आराम से, आराम से निश्चिंत बैठे, गर्दन लंबा हो गया। पार्वती ने बड़ा अच्छा कर दिया काम, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ के घा पात पत्ते शाखा हां सब आराम से गर्दन से ऊंचे ऊंचे भी वो तोड़ के खा सकते हैं आराम से है? अब ऊंट हो गए तो वैदिक कर्म से भी करना नहीं पड़ा, सनत कुमार थे तो वेद का अनुशासन मानना पड़ता था, प्रातः काल उठना पड़ता था, स्नान शौच आदि करना पड़ता था, गीता में कहा है ना यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते लोक संग्रह में वापी संपत्सन कर तुम्हारी। ज्ञानी को भी खुद अपने लिए आवश्यकता न होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बात सनत कुमार जानते थे, तो चार बजे उठते थे, शौच आदि के द्वारा नाना धोना करना ही पड़ता था उनको। अब तो पार्वती ने श्राप दिया, पशु हो गए। वेद पशु के लिए है कि मनुष्य के लिए है? वेद का अनुशासन पशु के लिए कि मनुष्य के लिए? वेद का अनुशासन मनुष्य के लिए, पशु के लिए तो है ही नहीं। अब जब तक वो मनुष्य थे, सनत कुमार थे, तब तक वेद अनुशासन था। अब पशु हो गए तो वेद अनुशासन से मुक्त हो गए कि नहीं? अब वो बस आराम से वहीं खाए जा रहे हैं, हगे जा रहे हैं, नहाना भी नहीं धोना भी नहीं, ले जी, और खाते भी रहे हैं, हग भी रहे, मल भी कर रहे हैं, खाए भी जा रहे हैं, कोई वेदानुशासन तो है ही नहीं भाई। मस्त ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मन है शरीर ऊंट का है, मन अखंडाकार वृत्ति चिंतन करे रहे हैं, वो ब्रह्म विचार कर ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब सामने आए तो शिव जी ने कहा पार्वती को, जाके पूछो तुमने जब श्राप देकर ऊंट बना दिया तो पहले सनत कुमार के रूप में रहते थे उस समय में, और इस समय जो ऊंट बनकर रह रहे हो इस समय में क्या अंतर है, क्या फर्क हुआ, तुमको क्या अनुभव हुआ ऊंट के शरीर में और मनुष्यों के शरीर में रहते हुए क्या फर्क पड़ा? तो सनत कुमार ने कहा कि मां तुमने बड़ी कृपा की, मनुष्य के शरीर में रहते वेद का अनुशासन पालन करते करते हम हैरान होते थे, तुम्हारी कृपा हो गई, ये ऊंट का शरीर दिया, अब तो आनंद आ गया, वाह बड़ा आनंद है महाराज। तो शिव जी ने कहा देखा तेरा श्राप दिया का फायदा क्या हुआ, किसी को श्राप देने पर यदि वह दुखी होता, रोता, गिड़गड़ाता, समझे ना, आपको कभी गुस्सा आता हो तो गुस्सा आते ही आप उसको गाली देते हो, गाली देते हो ना, तुम्हारा दिया हुआ गाली उसके मन में लगे और वो उसके पीड़ा का अनुभव करे तो तुम्हारा गाली फलीभूत हुआ, फलीभूत हुआ कि नहीं, सफल हुआ गाली। और तुम गाली देते जाओ वो सुने अनसुने कर रहा है, उसको छू ही नहीं रहा है वो गाली, तो क्या हुआ तुम्हारे काली? असफल हुआ, फलीभूत नहीं हुआ। तो दो चार दिन गाली देते रहोगे, उसको उस गाली से कुछ नहीं लगेगा, तो तुम क्या, इसको तो गाली दो तो भी कुछ नहीं लगता, बेकार है गाली देना, कहते हो कि नहीं? हा? तुम्हें दुख हुआ, उसको होना चाहिए तो तुम्हारे गाली से, तुम्हारी गाली सुनते ही उसको दुखी होना चाहिए था। यदि वो दुखी होता तो तुमको गाली देना मजा आता, और तुम गाली दिए जा रहे हो, उसको उस छू ही नहीं रहे हो गाली, तो दुख किसको होगा, उसको कि तुम्हें? गाली देने वालों को दुख होगा कि नहीं बोलो? मैं इतनी गाली दिए जा रहा हूं, उसको छू ही नहीं रहा है, दिए जा रहा हूं उसको छू ही नहीं रहा है, मैं अपमान कर रहा हूं उसको कोई असर ही नहीं कर रहा है, अपमान करने पर भी वो असर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दुखी हो रहा है जो अपमान कर रहा है, अपमानित तो होने वालों को असर नहीं करेगा तो वो दुखी होगा, कहेगा कि बेकार गया मेरा अपमान करना, उसका अपमान करना भी बेकार, गाली देना भी बेकार। ले तो सनत कुमारों ने कह दिया कि मां तुमने ऊंट बना दिया, बड़ा अच्छा किया। भगवान शिव ने कहा कि देखा, इनको मनुष्य शरीर मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पशु का शरीर मिले तो ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तू श्राप देकर कोई और कीड़े मकोड़े का शरीर बना देगी ना तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी वृत्ति तो हमेशा सतत ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, तो शरीर से क्या लेना देना है भाई। हाँ, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है, हाँ इसके बाद, इसके बाद आपकी कृपा से मुक्त हो गया तो हो गया, यदि कदाचित मुक्त नहीं हुआ फिर जन्म लेना पड़ा किसी अपराध के या किसी वासना के या से किसी कर्मों के चलते, तो आपसे इतना ही है, शरीर चाहे जो कुछ मिल जाए मेरा मन आपके चरण में लगाए रहे, बस इतनी मेरी इच्छा है। नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् सदा त्वत्पादाब्जं स्मरण परमानंदलहरी विहारासक्ताश्चेत् हृदयमिह किं तेन वपुना। मन यदि परमात्मा में लगा रहता है तो शरीर से क्या लेना देना है बोलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे लोग पूछते हैं, मैं गंडकी नदी की बात कर रहा था तो कोई जाते हैं शालिग्राम हम दे देते हैं, तो लोग पूछते हैं महाराज महिलाओं को शालिग्राम की पूजा करना चाहिए, कर सकती हैं महिलाएं शालिग्राम की पूजा? पूछ लेते हैं, प्राय पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं महिलाओं को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए। लेव जी, हाँ अरे भाई शरीर से क्या लेना देना है, तुम श्रद्धा से पूजा करते हो तो करो, दिखावा के लिए करते हो तो फिर नहीं करना, श्रद्धा हृदय तुम्हारे हृदय से संबंधित। तो मैं एक ही तर्क दिया करता हूं कि तुलसी महिला है कि पुरुष है? है तुलसी महिला है कि पुरुष है? महिला है, और महिला उनके सिर के ऊपर चढ़ सकती है और छू नहीं सकती है, बोलो? तुलसी शालिग्राम के सिर के ऊपर चढ़ती है कि नहीं? फिर क्यों छू रहे, क्यों सिर के ऊपर चढ़ गई, बोलो? तुलसी शालिग्राम के सिर के ऊपर चढ़ सकती है और महिला शालिग्राम को छू भी नहीं सकते? अरे भाई सिर के ऊपर तो नहीं चढ़ना चाहते हो ना, खाली सेवा करना चाहते हो, करो कोई फर्क नहीं पड़े, सिर के ऊपर नहीं चढ़ना। और तुलसी तो चढ़ गई, भगवान ने मना भी नहीं किया, क्या फर्क पड़ा बोलो? यहां तो पशु कीट आदि चैतन्य का उदाहरण दिया, तुलसी तो जड़ होने पर भी शरीर जड़ होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं बोलो? देख लो उसका हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है, जड़ शरीर वनस्पति स्थावर शरीर होने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देह तो कुछ भी मिल जाए महाराज, हमको उसकी चिंता नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार पशु का मिले, कीड़े का मिले, मकोड़े का मिले, जिसका मिलता है वो मिले, हमको उसके कोई लेना देना नहीं। हम इतने चाहते हैं कि हमारा मन आपके चरण कमल के हमेशा स्मरण करे। बस देखो ये बात से बात निकलती हो तो एक दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। एक गांव में एक शिव मंदिर था कहते हैं, और एक ब्राह्मण पुजारी शिव मंदिर में पूजा करता था। तो उसकी ड्यूटी थी, वो कर्म था, पुजारी बनकर बैठा हुआ था। और कहते हैं महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, इसको खाली दृष्टांत के रूप में लेना समझने के लिए। ठीक उसी मंदिर के आगे एक महिला अपनी परिस्थिति के अनुसार बाध्यतावश होगा, वह गलत काम करने के लिए हमारे सामान्य दृष्टि से है ना वेश्यालय खोलकर बैठी हुई थी कहते हैं, दृष्टांत की बात है। तो वह रोज उसके सामने बैठे श्रृंगार करके ग्राहकों की प्रतीक्षा करे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के भाव भाव करे ताकि ग्राहक आ जाए। और ठीक जब श्रृंगार करके ग्राहक को आकर्षित करने के लिए वह दरवाजे के बाहर बैठती थी प्रतीक्षा में, तो पुजारी भी उसको देखता था। लेकिन वो तो पुजारी हो गया, जा नहीं सकता है ना, ब्राह्मण है पुजारी है, जा नहीं सकता है। और कोई ग्राहक आ गया और अंदर कमरे में चला गया तो पुजारी कल्पना ही कल्पना के भूत में डूब जाता था, समझे कि नहीं। एक दिन की बात है, घूमते घूमते वहीं से आगे एक महात्मा आ गए। महात्मा मंदिर के अंदर गए, दर्शन किया और सामने वो बैठी थी श्रृंगार करके महात्मा, उसके यहां चले गए, खड़े हो गए, नारायण माताजी नारायण हरि, क्या चाहिए महाराज? अरे हम तो साधु हैं, समय हो गया भोजन का, हमको भिक्षा दे दो। बोले महाराज आप क्या मेरा भिक्षा हमारे यहां से मेरे से भिक्षा लेंगे? मतलब हमको तो भिक्षा चाहिए। क्यों महाराज, क्यों तुमने क्यों पूछी? बोले क्योंकि मैं एक गलत औरत हूं, मेरा आचरण ऐसा है, अशुद्ध है, लोक निंदा परक मेरा आचरण है, मेरा व्यवहार है ऐसा, और ऐसे मेरे से तुम भिक्षा लोगे? महात्मा ने कहा कि अरे भाई तुम क्या आचरण कर रही हो, कैसे आचरण कर रही हो, हमको उससे क्या हिसाब लेना है? तुम्हारे पास भिक्षा है तो दे दो, नहीं है तो हम चले जाएंगे महाराज। तो उसने लाके भिक्षा दी, महात्मा ने ले ली। तो उसने कहा कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा प्रारब्ध, मेरी परिस्थिति मुझे इस कर्म करने में मजबूर कर रही है, मैं कोई इसमें रुचि और इच्छा से नहीं कर रही हूं, बाध्यता से कर रही हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज? बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ठीक मंदिर के सामने तुम्हारा यह दुकान है ना, तुम बड़े भाग्यशाली, सामने मंदिर है, रोज भगवान की सेवा करो, पूजा करो, झाड़ू करो, पोछा करो, यूं करो, सेवा करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, और अपना काम भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा उद्धार उसी से होगा। तो महात्मा जब सेवा करने वो गए, महात्मा वो सेवा करने गई तो और सब लोगों ने उसको दुत्कारा और जाने नहीं दिया, गेट से अंदर घुसने नहीं दिया, अरे ऐसे गलत मंदिर के अंदर क्यों आ रही है, जा भाग जा। बड़े दुखी हो गई, महात्मा ने तो कहा था सेवा करो। कुछ दिन के बाद फिर महात्मा मंदिर दर्शन करने आए, दर्शन किया, भिक्षा मांगा, रोने लगे, महाराज हमको तो अंदर जाने नहीं दिया उन लोगों ने, मैं क्या करूं, कैसे सेवा करूं, आपने कहा था सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले बेटी तुम वो लोग जाने नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, जब भी तुमको फुर्सत हो कि बस वो भगवान शिव का ध्यान करो, क्योंकि सामने तो दुकान ही है, बस आंख बंद करो, उन्हें भगवान का ही स्मरण करो सतत। हा अरे महाराज आप बड़े बड़े राक्षसों का तो आप उद्धार करते हो, कैसे कैसे का आपने उद्धार किया, चंद्रमा से मैं गया गुजरा तो नहीं हूं, वो तो अपने गुरु पत्नी प्रति गमन किया है, उसको तो अपने उसका तो कल्याण किया है, मैं इतना गया गुजरा तो नहीं हूं। हे शिवा, आप ही मेरे रक्षक हैं, मेरा कल्याण करो। बस सतत ध्यान हृदय में भगवान शिव का ध्यान करती है और परिस्थिति अनुसार जो काम करना है करती है। वहां बैठकर वेश्या का शरीर स्त्री का शरीर हो रहा है, लेकिन मन सतत भगवान शिव के स्मरण में वो लगा रही है। ये समझने के लिए प्रसंग है, सांदर्भिकी में बोल रहा हूं। तो उधर पुजारी मंदिर में बैठा है तो सतत उसका ध्यान कर रहा है। कहते हैं एक बार की बात है, आप लोग क्यों हंसने लगे? कहते हैं एक बार की बात है, पुजारी मंदिर के अंदर बैठकर उसका ध्यान कर रहा है और वो वेश्या अपने दुकान में बैठकर शिव का ध्यान कर रही है। ठीक उसी समय में बड़ा जोर से भूकंप आ गया तो मंदिर भी गिर गया, वेश्यालय भी गिर गया, पुजारी भी मर गया, वेश्या भी मर गई। अब वेश्या कहां जाएगी? हैं? वेश्या को तो नरक जाना चाहिए ना। हाँ, स्त्री शरीर है, गलत काम कर रही है, उसको स्वर्ग जाने का कोई अवसर है अब नहीं है। अब पुजारी कहां जाएगा? ब्राह्मण का शरीर है, मंदिर के अंदर है, शिव का पुजारी है, वो कहां जाएगा? वो हम लोग की मान्यता तो यही ना है, हम लोग केवल शरीर और कर्म पर ध्यान देते हैं, भावना के मूल्यांकन हम नहीं करना जानते। परिणाम आश्चर्य यह हुआ कि पुजारी पहुंच गया नरक और वेश्या पहुंच गई स्वर्ग। तो संयोग से कुछ दिन के बाद उस गांव का कोई नगर सेठ मर गया, तो वो भी स्वर्ग पहुंच गया, कहीं दान किया होगा उसके बल से स्वर्ग पहुंचा। तो वहां वो वेश्या को देखता है, बड़ा आश्चर्य हो गया भाई उसको, तू यहां कैसे आ गई? हां, कुछ दिन के बाद एक और जीव मर गया तो अपने कर्म के अनुसार नरक पहुंच गया। तो वहां पुजारी को देखा था, अरे तू यहां, तू कैसे आ गया? तो समझ में नहीं आया, तब इंद्र से पूछा उसने, ये वेश्या यहां कैसे आ गई? अब यमराज से पूछा उसने कि ये पंडित यहां कैसे आ गया? तो इंद्र ने जवाब दिया, जेठ जी, इसका शरीर स्त्री का है, काम वो गलत कर रही थी, फिर भी ये सतत भगवान का चिंतन करती थी, हृदय भगवान के चरण में समर्पित था, वृत्ति सतत भगवतमय था इसका, मरते समय उसकी वृत्ति वही थी, अंते या मति सा गति, तो भगवान की कृपा से ये इसका सदगति हो गया। और इसकी अंते या मति सा गति, उसकी अंत वृत्ति उधर चिंतन में था, विषय चिंतन में था, वो परमात्मा चिंतन में थी। ये दृष्टांत से, ये श्लोक के अनुसार शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, महत्वपूर्ण शरीर नहीं है, महत्वपूर्ण है हृदय। इसीलिए भक्ति हृदय में होता है। हृदय से सतत भगवत चिंतन करो, शरीर चाहे कीड़े का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, देवता का हो, असुर का हो, है प्रहलाद का शरीर किसका है? असुरों का है, परंतु सतत हृदय में भगवान की भक्ति है। लेव जी, रावण का शरीर किसका है? ब्राह्मण का है। रावण का शरीर किसका है? ब्राह्मण का है। पौलस्त्य कर नाती, नहीं सुना है? पुलस्त्य ऋषि के नाती, ब्राह्मण का पुत्र है। क्या करोगे शरीर ब्राह्मण का होने से? वृत्ति भगवतमय है ही नहीं, विषयमय है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।